सम्यक दर्शन के ऊपर यह तीसरा सत्र है। सम्यक दर्शन के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, इस विषय में बड़ी चर्चाएं होती है। और मिथ्यात्व के चले जाने पर क्या क्या नहीं हो सकता, यह भी एक महत्व का विषय है। तो इसका एक उदाहरण है कि जैसे किसी को किसी वस्तु का सेवन करने पर सिर में भारीपन आता है, उदर में वायु का प्रकोप आदि होता है, और नाड़ी देख करके जब वैद्य उस वस्तु को खोज निकालता है कि अमुक वस्तु से ऐसा हो रहा है, तब उस वस्तु का त्याग कर देता है वो और उसका उसको अपथ्य बना करके उससे परहेज करता है। परहेज करने पर उस वस्तु से होने वाली सारी विकृतियां दूर हो जाती है। बस इसी प्रकार आगम के आश्रय से जब मिथ्यात्व का निराकरण होता है, तब उस मिथ्यात्व के होने वाली सारी विकृतियां समाप्त हो जाती है। एक प्रश्न आया था ना कि कोई समय पहाड़ में बताए हुए सम्यक दर्शन का जो विषय है उसको पूरी तरह मान्य कर ले, लेकिन अन्य कुछ बातों को मान्य ना करें, तो वो सम्यक दृष्टि होगा या नहीं? तो उसका उत्तर है कि वो वायु उत्पन्न करने वाली वस्तु का त्याग करने पर उसके सारे लक्षणों का अभाव हो जाएगा। इसी तरह मिथ्यात्व का अभाव होने पर वो एक अक्षर को अमान्य करने रूप जो मिथ्यात्व का फल है, मिथ्यात्व का कार्य है, उसका भी अभाव हो जाएगा। ये स्पष्ट है कि उसमें मिथ्यात्व से होने वाली कोई भी परिणति नहीं हो सकती अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं रह गया तो। जहां जहां जो भी लिखा हुआ है वो सब उसके अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, जैसे अभी कुछ विद्वानों ने ऐसा लेख लिखा कि प्रमाण बड़े अथवा विवेक, पूरी लेखमाला है उनकी, अनेक लेख है, तो फिर उनके लिए केवल एक बात कही जा सकती है कि जब विवेक आगम की सीमा का उल्लंघन करता है तब उसको सामान्य विवेक नहीं कहते, उसको विवेक का अतिरेक कहते हैं। और विवेक के अतिरेक का दूसरा नाम है अविवेक। तो अविवेक होना सम्यक्त का सूचक नहीं है। विवेचनम विवेक पृथक करणम इत्यर्थः, उचित अनुचित, हितकारी अहितकारी आदि जितने भी भंग बनते हैं उनको पृथक करने की जो क्षमता है ज्ञान के पास, उसको विवेक कहते हैं। और ये विवेचन गुण सबके ज्ञान के पास होता है। जितने भी सहनी पंचेंद्री जीव हैं उनके पास ये गुण होता है, भले उसका प्रयोग करे या ना करे, लेकिन ये क्षमता होती है। और इस क्षमता के कारण ही आप भोजन कर रहे हो और कोई प्रश्न करे आपसे, जीरा डला है क्या, तो आपका विवेक गुण उस मिश्रित स्वाद में से पृथक करके जान लेता है कि जीरा डला है कि नहीं। इसका नाम विवेक है, पृथक करने की क्षमता का नाम विवेक है। तो जो आगम को ही पृथक कर डाले विवेक के सामने और प्रमाण को ही अप्रमाण प्रमाणित करने लग जाए, वो विवेक नहीं है, विवेक का अतिरेक है, और विवेक के अतिरेक का नाम अविवेक है। तो समय पाहुड़ की गाथा से अपन ने देखा था कि निश्चय से जाने गए नौ पदार्थ ही सम्यक्त हैं। फिर आत्मख्याति टीका से भी अपन ने देखा कि या तनुभूति ही सात त्वात्मख्याति रेव आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेवेति समस्तमेव निर्वध्यम्। जो अनुभूति है वह आत्मख्याति है, जो आत्मख्याति है वही सम्यक दर्शन है, इसमें कोई दोष नहीं है। और फिर उन्होंने एक कलश भी लिखा, 13वां कलश। वैसे 12वां कलश भी बहुत सुंदर है, थोड़ा जिद करना पड़ेगी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। वो कैसे है? तो वो कह रहे हैं भूतम भांत मभूतमेव रवसात निर्भिद्य बंधन सुधीर यद्यंतः किल कोप्यहो कलयत व्याहत्य मोहम हठात आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवम नित्यं कर्म कलंक पंक विकलह देवः स्वयं शाश्वतः। आचार्य कहते हैं 12वां कलश है, फिर 13वां कलश भी बताते हैं। अभी अपन ने कल 10वां कलश देखा था, संस्कृत टीका है आचार्य शुभचंद्र देव की, परम अध्यात्म तरंगिणी जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, यदि अंतः कोपि कलयति, यदि अंदर कोई भी आकलन कर ले, वो चुनौती दे रहे हैं आपको, बोल रहे कि करके देख लो। कोपी कोई भी, जिनको भी करने की उत्कंठा हो वो करके देख लो। क्या? भूतम भांतम अभूतम। भूतम का मतलब जो हो चुका है, भांतम का अर्थ जो हो रहा है, और अभूतम का अर्थ है कि जो अभी हुआ नहीं है। त्रिकालवर्ती बंध का हठात निर्भिद्य, हठ पूर्वक भेदन करके ज्ञान से, अभी कर्मों का छेदन नहीं हो रहा है, छेदन बाद में होगा, अभी उनका भेदन करना है ज्ञान से, और अंदर में आकलन करना है। तीनों कर्मों को हटाकर, तीनों काल संबंधी कर्मों को हटाकर अपने आप को देखो, क्या दिख रहा है? और मोहम व्याहत्य हठात, भ्रांति को हठ पूर्वक नष्ट करके देखो क्या बचता है,
भ्रांति का कारण मोह
उसको हटा करके। आत्मानुभवैक गम्य महिमा, केवल आत्मानुभव, आत्मानुभव से ही जिसकी महिमा का परिचय हो सकता है, ऐसी आत्मा ध्रुवम व्यक्त आस्ते, हमेशा प्रकट विराजमान है। तीनों बंधन का भेदन करके देखो तो वो आत्मा प्रकट रूप से विराजमान है। और किस किस रूप में विराजमान है? तो बोलते हैं कि नित्यं कर्म कलंक पंक विकलह, नित्य ही कर्म रूपी कलंक पंक से विकल, इनसे रहित, और स्वयं शाश्वत देवः, और स्वयं शाश्वत देव अर्थात आराध्य के रूप में वो आत्मा विराजमान है। तो यहां पर आत्मा सिद्ध होगी उसकी चर्चा नहीं है। आप विवेचन करके देखो, आप उसको हटा करके देखो तो अभी भी वो वही है। जैसे नेमन्ना ने बाहुबली भगवान को पत्थर में देखा था, बाहुबली भगवान उस समय किसी को दिख नहीं रहे थे, सिर्फ देखने वाले को दिख रहे थे। इसी प्रकार आत्मा किसी को दिखती नहीं, सिर्फ देखने वाले को दिखती है। निमण्णा बोलते हैं, साउथ में अन्ना बोलते ही हैं, अरिष्ट नेमी नाम था उनका। तीनों काल के बंधन का भेदन करके देखना है। उसने पूरे ग्रेनाइट का भेदन करके अंदर देखा था भगवान को, और क्या कहता है कि मैंने थोड़ी बनाया बाहुबली भगवान को, मैंने तो सफाई की है बस, तो बस उतनी सफाई का काम ही है। तो वो दिख जाए, और फिर कहते हैं 13वें कलश में क्या कह रहे हैं, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यम अवबोध घन समन्तात्। शुद्ध नयात्मिका जो आत्मा की अनुभूति है, ये ज्ञानानुभूति ही, यही ज्ञानानुभूति है, ये ज्ञानात्मक है, चारित्रात्मक नहीं है। चारित्र के साथ होने वाली जो शुद्धात्मानुभूति है, जो अभेद रत्नत्रय के समय शुद्धोपयोगी मुनि को होती है, वो इससे भिन्न है। ये यथोदित आत्मानुभूति है और वो शुद्धात्मानुभूति है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों का विषय एक है। यथोदित सम्यक दृष्टि जो बन रहा है उसको है, और दोनों के काल में अंतर है। शुद्धात्मानुभूति शुद्धोपयोग के काल में होती है, और उसका काल अंतर मुहूर्त ही है। कहीं कभी शुद्धोपयोग का काल अंतर मुहूर्त का उल्लंघन नहीं करता, और ये जो यथोदित आत्मानुभूति है, ये समय सार के 20वें कलश में उसका काल दिया हुआ है। कितने काल तक रहती है? हाँ, कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामो नन्त चैतन्य चिन्नम् नखलु नखलु यस्मा धन्यथा साध्य सिद्धिः। ये आचार्य अमृतचंद सूरी कह रहे हैं कि कथम अपि समुपात त्रित्वम अपि, ये आत्मा आत्म ज्योति किसी अपेक्षा से तीन बने को प्राप्त हुई है, दर्शन ज्ञान चारित्र। एक आत्म ज्योति के ये तीन भेद हैं, दर्शन रूप ज्योति भी है, ज्ञान रूप ज्योति भी है, और चारित्र रूप ज्योति भी है। फिर भी एकताया अपतितम, जब अपन आत्म ज्योति को देखते हैं तो वो अपने एकत्व से पतित नहीं हो सकती। आत्मा के तीन खंड नहीं हो सकते। तो ऐसी उस आत्म ज्योति को, कैसी है वो आत्म ज्योति? तो अमृतचंद सूरी कह रहे हैं कि हमारी मुनिचर्या से, हमारी जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति है, उससे उद्गच्छत अच्छम, वो निरंतर स्वच्छ होती चली जा रही है। उस आत्म ज्योति का वयमिमे अमृतचंद्र आचार्याः सततम अनुभवामः, हम उस आत्मज्योति का सतत अनुभव करते हैं। सततम, खाते समय, पीते समय, सोते समय, चलते समय, बोलते समय, और छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान के समय अथवा प्रमाद के समय भी उस आत्मज्योति का हमें सतत अनुभव रहता है। न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, इससे अतिरिक्त साध्य की सिद्धि हो नहीं सकती अन्य प्रकार से। ये क्या है? ये आत्मानुभूति सम्यक ज्ञान रूप है। और अनुभूति शब्द का अर्थ यहां पर यथार्थ परिचय है। एक बार हमने पहले भी कहा था, आत्मानुभूति को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट सेल्फ एक्सपीरियंस। नहीं, वो तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो आत्मचेतना हुई। अब वो चेतना का भी एक अलग विषय है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अपने सब शास्त्रों में तीन बातों को विशेष रूप से गहराई से प्ररूपित किया, चेतना, अनुभूति और उपयोग। आप उनके किसी भी आगम में देखोगे तो ये तीन ही मिलेंगे आपको, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, चेतना, अनुभूति और उपयोग। तो ये कैसी आत्मानुभूति है? सोते समय, खाते समय, पीते समय, हर काम करते समय 24 घंटे चल रही है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का अर्थ होता है सत्यापन। यानी आत्मा के सत्य स्वरूप से हमेशा परिचित रहना, वहां से नहीं चूकना, ये आत्मानुभूति है। और अगर अपन अनुभव का अर्थ वो ले लें जो व्यावहारिक जगत में चलता है, तो व्यावहारिक जगत का जो अनुभव है वैसा अनुभव आत्मा का इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वह अनुभव इंद्रिय और मन से होता है। और आत्मा इंद्रिय और मन का विषय नहीं है, आत्मा सम्यक ज्ञान का विषय है। मन भले उसमें सहायक बनता हो, मति श्रुते और निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेश। मति और श्रुति का जो विषय निबंध है वो क्या है? कहां तक जाते हैं मति और श्रुतक ज्ञान? असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु, कुछ पर्यायों वाले सभी द्रव्यों तक मति और श्रुतक ज्ञान का विषय होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सभी द्रव्यों में विषय है मति और श्रुतक ज्ञान का, तो अपन अपने मति श्रुतक ज्ञान से आत्मद्रव्य में भी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा अर्थ होगा।
द्रव्य में आत्मा भी
लगता है ना कि ऐसा अर्थ होगा, लेकिन इसका उत्तर आचार्य अकलंग देव ने तत्वार्थ वार्तिक में दिया है कि आत्मा को अथवा अन्य भी कुछ द्रव्य हैं जिनको अपना मति ज्ञान अथवा आत्मा अपना श्रुति ज्ञान सीधे सीधे जान ही नहीं सकता, उसको जानने की एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बिना जान ही नहीं सकता। आकाश द्रव्य को कैसे जान सकती है अपने आत्मा? कोई उपाय है क्या कि अपना मति ज्ञान आकाश द्रव्य को जान ले? और वहां सूत्र में लिखा है कि सभी द्रव्यों को जानता है लेकिन सब पर्यायों को केवल न्याय जानता है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु, सर्व द्रव्येषु मति श्रुते और निबंधो, कुछ पर्यायों वाले सभी द्रव्यों में मति और श्रुति ज्ञान का प्रवेश है। तो अपन एक प्रश्न करके देखें अपने आप को कि ये सूत्र में तो लिखा है कि सभी द्रव्यों में मति और श्रुति ज्ञान का प्रवेश है, तो क्या मैं आकाश द्रव्य को जान सकता हूं? तो उसको जानने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बिना मति और श्रुति ज्ञान भी संभव ही नहीं है। अधर्म द्रव्य को कैसे जानेगा मति ज्ञान, धर्म द्रव्य को कैसे जानेगा? तो उसका उत्तर आचार्य अकलंक देव ने दिया, तत्वार्थ वार्तिक। प्रथम अध्याय सूत्र न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। इसको बहुत सावधानी से सुनना है, ये एक अद्भुत विषय है। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, मति ज्ञान के इसमें आएगा। नहीं, सूत्र क्रमांक कौन सा? जी जी मिल गया। वार्तिक क्रमांक 9, अनुच्छेद 2। एवं अभिनिबोधिकम द्रव्य क्षेत्र काल भावैरवसेयम्। इस तरह मति ज्ञान का निर्णय द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की अपेक्षा से करना। द्रव्य तो मति ज्ञानी, अब ये पंक्ति ध्यान से सुनने की है, मति ज्ञानी द्रव्य की अपेक्षा सर्व द्रव्याण्य सर्व पर्यायाण्युपदेशेन जानाति। सब द्रव्यों को और कुछ पर्यायों को उपदेशेन जानाति, जिनेन्द्र के उपदेश से जानता है। तो आकाश द्रव्य को जानने का तरीका पता चल गया, कैसे जानेगा? आगम से, और कोई उपाय है ही नहीं। सब द्रव्यों को, उसमें आत्मा भी शामिल है, कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों को। असर्व पर्यायाणी, ये सर्व द्रव्याणी का विशेषण है, और विशेषण होने के कारण नपुंसकलिंग है, अन्यथा पर्याय क्या है? पर्याय नपुंसकलिंग नहीं है। क्षेत्रतः उपदेशेन सर्व क्षेत्राणि जानाति। मतिज्ञानी जीव क्षेत्र की अपेक्षा आगम और उपदेश एकार्थक है। और कौन सा उपदेश होगा? आगम से भिन्न कोई उपदेश तो नहीं है यहां पर। क्षेत्र की अपेक्षा उपदेश से सब क्षेत्रों को जानता है। निष्कुट क्षेत्रों को भी, और अपन यहां बैठ के जान सकते हैं क्या निष्कुट क्षेत्रों को? नहीं जान सकते अपन त्रसनाड़ी के ही पूरे क्षेत्र को नहीं जान सकते, उपदेश ही नहीं जाना थी। अथवा क्षेत्रम विषय, अथवा क्षेत्र का अर्थ विषय भी होता है, तो उतने क्षेत्र तक के इंद्रियां जो है, चक्षुर इंद्रिय का जितना क्षेत्र है, स्पर्शन इंद्रिय का जितना है, उसको ग्रहण करती हैं। कालतः उपदेशेन सर्व कालम जानाति, काल की अपेक्षा उपदेश से अर्थात आगम से सब कालों को जानता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अपन कितनी चर्चा कर लेते हैं। भावत उपदेशेन जीवादीनाम औदयिकादीन भावान जानाति, भाव की अपेक्षा भी उपदेश से जीव के औदयिकादिक भावों को जानता है। अब औदयिकादिक भावों में ही परम पारिणामिक भाव आता है, और परम पारिणामिक भाव ही शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। तो कैसे जाना उसने शुद्ध आत्मा को? आगम से जाना। कोई सोचे कि आंख बंद करके मैं जान लूं, तो आंख बंद करने से कोई ऐसा चमत्कारी ज्ञान तो प्रकट नहीं होने वाला है जिससे अमूर्त को वो विषय कर लेगा? कैसे कर सकता है? अच्छा, एक अपन विचार करते हैं कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय आत्मा क्यों नहीं है। तो अपन एक विचार करके देखें कि आत्मा जो है उसका अस्तित्व कैसा है काल की अपेक्षा? त्रैकालिक है कि नहीं? त्रैकालिक है। और अपना मति और श्रुत ज्ञान जो है वो त्रिकालग्राही है क्या? तो फिर जो त्रिकालग्राही नहीं है वो त्रैकालिक को ग्रहण कर सकता है क्या? आप और विचार करके देखिए, आत्मा के अस्तित्व की बात कर रहे हैं हम, अनादि निधन जो अस्तित्व है, उतने बड़े अस्तित्व को ग्रहण करने की शक्ति है क्या मति या श्रुत ज्ञान में? तो फिर आत्मा कैसे विषय बन गया उसका? काल की अपेक्षा से जब आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक है और उसको ग्रहण करने की शक्ति इन दोनों ज्ञानों में नहीं है, तो फिर इन ज्ञानों का विषय आत्मा कैसे बन सकता है? त्रैकालिक वस्तु उस ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकती जो ज्ञान त्रैकालिक ना हो। वो पूर्ण और अपूर्ण की बात है ही, मां के अस्तित्व को आप घटा करके जानोगे क्या? क्या अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपिश अवधि है। नहीं, ये प्रतिरोध करने की बात ही नहीं है, ये एकदम सीधा सीधा गणित है, एकदम दो और दो चार का गणित है ये। वो तो स्पष्ट लिखा, हम तो आपको उदाहरण दे रहे केवल। आप देखिए, एक गागर में सागर कैसे भर सकते हो? अंश को अपन यहां पर पूर्ण कैसे कह सकते हैं? तो असर्व पर्याय तो स्वयं आचार्य कह रहे हैं ना। तो द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा मति और श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उस द्रव्य की जो सत्ता है वो त्रैकालिक है और उतना काल इसमें नहीं समा सकता है मति और श्रुत ज्ञान में। सभी की है, उसका जितना उसकी सीमा में है उतना ही हो रहा है, इसीलिए तो क्षेत्र दे दिया बीच में। ये एक बात हो गई। अब चलो, द्रव्यानुभूति तो खारिज हो गई, आत्मानुभूति शब्द में अगर अपन द्रव्यानुभूति लेना चाहते तो वो घटित नहीं हो सकती, ये सिद्ध हुआ नहीं हुआ? आपको जटिल तो नहीं लग रहा ये विषय? एकदम सीधा सीधा है। तो आत्मानुभूति का अर्थ आत्मद्रव्य की अनुभूति नहीं है, क्योंकि आत्मद्रव्य त्रैकालिक है और त्रैकालिक को ग्रहण करने की शक्ति मति और श्रुत ज्ञान में नहीं है, क्योंकि क्षयोपशमिक है, क्षयोपशमिक सीमित होता है। अब गुणानुभूति ले लें, क्योंकि आत्मा जो है उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। अभी अपन उस पर आएंगे ना, उसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है, अभी तो क्रम से आ ही रहे हैं अपन वहां। फिर गुणानुभूति की तरफ विचार करें, क्या गुणानुभूति को आत्मानुभूति कह सकते हैं? तो उस पर अपन विचार करके देखें, कितने गुण हैं आत्मा में? यदि आत्मा में अनंत गुण है तो प्रश्न उठता है कि मति और श्रुत ज्ञान क्या अनंत को विषय कर सकते हैं? तो गुणानुभूति भी संभव नहीं है। अब पर्याय की अपेक्षा से विचार करें, तो पर्याय की अपेक्षा से अगर विचार करते हैं तो पर्याय तो अशुद्ध है, और शुद्ध न है तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करा रहा है, तो अशुद्ध में शुद्ध की अनुभूति कैसे संभव है? तो इसलिए कहा कि वो ज्ञानानुभूति है, वो उसका परिचय है। जैसे एक उदाहरण है, पर्यायानुभूति इसलिए नहीं है आत्मानुभूति, अभी जो यथोदित आत्मानुभूति की चर्चा चल रही है वो पर्यायानुभूति इसलिए नहीं है क्योंकि पर्याय अशुद्ध अपनी संसारी पर्याय है, और अपने अन्य भी जो अनुजीवी गुण हैं उन सबके विकारी पर्याय अभी उदय में है, तो कहां से शुद्ध आत्मा का वो होगा अनुभव? नहीं हो सकता। जी नहीं, पर्याय सभी द्रव्यों की होती है, पर्याय रहित तो हो ही नहीं सकता द्रव्य। पज्जय विजुतम दव्यम दव विजुत्ता ही पज्जयाण थी। अभी जो अपनी आत्मा की अनुभूति हो रही है शुद्धने से, उसका क्या अर्थ है? जिसको आचार्य अमृतचंद सूरी 20वें कलश में कह रहे हैं कि हम सतत अनुभव करते हैं आत्मा का। सतत का अर्थ ध्यान नहीं होता, ध्यान के समय नहीं, खाते पीते समय, शिष्यों को डांटते समय भी, और कोई चिंता करते समय भी। आचार्यों को चिंता भी होती है, हित की चिंता होती है कि नहीं शिष्यों के? हर समय आत्मानुभूति चालू है, तो वो कौन सी आत्मानुभूति है? वो समय ज्ञान रूप अनुभूति है, और वहां पर अनुभूति शब्द का अर्थ है रियलाइजेशन, अंग्रेजी में उसको रियलाइजेशन कहते हैं, सत्यापन। वो अनुभूति का अर्थ एहसास नहीं है, महसूस करना नहीं है, फील करना नहीं है, उसको उसका सत्य स्वरूप परिचय में रखना है। वो परिचय जैसे ही छूटेगा मिथ्यात्व हो जाएगा, मिथ्यात्व होगा तो परिचय छूट जाएगा, तुरंत संशय विपर्याय अध्यवसाय आ जाएंगे आत्मस्वरूप के प्रति। उसका नाम अनुभूति। वो अनुभूति 24 घंटे चलती है सभी समय एक दृष्टियों को, जिसका नाम है यथोदित आत्मानुभूति। जी ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल
को नहीं जानता, पर्याय नहीं जानता, किंतु कुछ काल
आत्मा मूर्त है कि अमूर्त? अमूर्त को ग्रहण करने की शक्ति है क्या मति ज्ञान? और तो फिर कैसे हो गया मति? इतनी सी बात है। बिल्कुल नहीं। जो बुद्धि गम में होता है उसी को अपन अनुभव में ला सकते हैं। जैसे आपको सिर दुख रहा है तो आप सिर दर्द का अनुभव कर सकते हैं, अथवा कोई स्वादिष्ट वस्तु आपकी जीवा इंद्रिय के संपर्क में है तो फिर आप उसके स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का कैसे अनुभव करोगे? उस सुखानुभूति और दुखानुभूति जो हो रही है संसारी प्राणी को, वो सब पराधीन है। बिल्कुल कर्माधीन है वो पूरा। वो वैभाविक सुख है। और शुद्धोपयोग में जो शुद्धात्मानुभूति शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां भी अगर अनुभूति शब्द का अर्थ अपन परिचय लेते हैं और आत्मस्वरूप को शुद्ध कहते हैं, तो शुद्धानुभूति जो हो रही है यथोदित आत्मानुभूति में, वहां पर केवल ज्ञानात्मक हो रही है। लेकिन वो जो शुद्धात्मानुभूति शुद्धोपयोग के काल में हो रही है, वहां पर अभेद रत्नत्रय रूप परिणत हो रहा है, प्रचंड पुरुषार्थ हो रहा है। वो ध्यानावस्था है और अंतर्मूर्त से अधिक टिक नहीं सकती। और उसी शुद्धोपयोग के साथ अगर संगणन आदि सारी पात्रताएं जुट जाए तो अंतर्मुहूर्त में घाती कर्मों के पटल का क्षय करने में समर्थ है वो शुद्धात्मानुभूति। इतनी क्षमता है उसमें। देखो मति भी, स्मृति भी ज्ञान है, संज्ञा भी ज्ञान है। ज्ञान के 336 भेद बताए मति ज्ञान के, और तत्वार्थ सार में स्वसंवेदन भी मति ज्ञान का एक भेद बताया। तो फिर लेकिन शुद्धोपयोग के समय जो शुद्धात्मानुभूति हो रही है वो चारित्र के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो निर्विकल्प आत्मानुभूति है और ये सब सविकल्प है। सविकल्प अर्थात सराग है, वहां रागादिक विकल्पों से रहित हो रही है। ध्येय कुछ भी हो, अभी जैसे पूर्व सत्र में एक चर्चा निकली थी कि परमात्मा के ध्यान से अथवा आत्मा के ध्यान से आत्मा परमात्मा हो जाती है, लेकिन परमात्मा की भक्ति से आत्मा परमात्मा नहीं होती है। कोई सुनकर ऐसा अर्थ लगा ले कि परमात्मा की भक्ति से आत्मा परमात्मा हो जाती है, तो भक्ति के काल में तो नहीं होती है। भक्ति के बाद जब ध्यानस्थ होंगे तब होने में आपत्ति नहीं है। और अंतर क्या पड़ता है भक्ति में और ध्यान में? परमात्मा का ध्यान और परमात्मा की भक्ति। भक्ति प्रवृत्ति रूप है और ध्यान निवृत्ति रूप है, और निवृत्ति परमात्म पद प्रदायक है। प्रवृत्ति सातिशय पुण्य अथवा निर्जरा को भी प्रदान कर सकती है। धवला की 10वीं पुस्तक में लिखा ना कि सम्यक दृष्टियों की जिन पूजा, सम्यक दृष्टियों की जिन वंदना, सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया गया जिनेन्द्र को नमस्कार, और यह शब्द से च शब्द से और भी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं जप तप आदि जो भी, उनसे क्या होता है? बहु कम पदे से निज्जरो लंबादोच, धवला की 10वीं पुस्तक में है। बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा होती। प्रदेश का अर्थ यहां पर परमाणु लेना। तो जिनकी यह धारणा है कि भक्ति आदि से केवल पुण्य का आश्रय होता है, उनको सिद्धांत ग्रंथ के इन वचनों पर भी एक बार विचार करना आवश्यक है। यहां कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टियों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं, भक्ति कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टियों की जो भक्ति है वो निर्जरा का भी कारण है। कैसे होगी? यहां तो सम्मा इट्ठीणम लिखा, उसके लिए पुण्य का कारण है। वो मूल विषय से बाहर चले जाएगा, अपना जो चल रहा है ना विषय वो। तो देखिए, अनुभव शब्द का हम आपको एक प्रयोग बताते हैं कि जिससे अपने को स्पष्ट होगा कि अनुभव का अर्थ रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है। वैवाहिक जीवन के 30 वर्ष गुजर गए और पत्नी की धारणा में यही था कि ये महाकंजूस है मेरा पति, लेकिन पहली बार जब नगर में जिनालय निर्माण का कोई प्रसंग आया तो पति ने अपने करोड़ों की संपत्ति दान में दे दी। तब पत्नी क्या बोलती है, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे तो आज अनुभव हुआ कि आप कंजूस नहीं हो। यहां अनुभव शब्द का अर्थ क्या है? आज पहचाना मैंने आपको, ये अर्थ है उसका। इसी प्रकार अनुभव शब्द का और हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, मोहक क्षयाद अनुभवन अपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान गणयितुन्न तव क्षमेत कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान् मियेत केन जलधेर्ननु रत्न राशि। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कल्याण मंदिर के चौथे काव्य में पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मोहक क्षयात मिथ्यात्व के नाश से, यहां पर उदय क्षय लेना, यहां क्षय सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही, तो यहां पर मिथ्यात्व के अभाव से मर्त्य मनुष्य, तव गुणान अनुभवन नपि, आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी गणयितुम न क्षमेत, गिनती करने में समर्थ नहीं होता। प्रश्न यह है कि पार्श्वनाथ भगवान उस सम्यक दृष्टि के लिए स्वद्रव्य है कि परद्रव्य? परद्रव्य का अनुभव होता है, परद्रव्य के गुणों का, तो अनुभव का अर्थ क्या हुआ? नहीं हुआ स्व। वहां आचार्य कुमुदचंद स्वामी साक्षात कह रहे हैं कि तव गुणान अनुभवन नपि, आपके गुणों का अनुभव करते हुए भी, तो कैसा अनुभव है वो? परिचय रूप है, एहसास या महसूस करने रूप नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है ना ये। तो अनुभव तो कर सकता है लेकिन गिनती नहीं कर सकता। कल्पांत वांत पयस प्रकटो भी अस्मा जलदेह, समुद्र प्रलय काल में कल्पांत काल में वांत पय हो जाता है, अर्थात उसका पानी जो है पूरा फिक जाता है, तो नीचे की रत्न राशि प्रकट हो जाती है। तो रत्न राशि प्रकट होने पर भी मियेत केन, कौन गिन सकता है कि इसमें 3 लाख रत्न या 4 लाख, कोई नहीं गिन सकता। लेकिन परिचय तो हो जाता है ना कि रत्न है। लाल वाले रत्न को पन्ना कहता है क्या? नहीं कह सकता। और नीले वाले रत्न को पुखराज कहता है क्या? नहीं कह सकता। तो परिचय पूरा होता है लेकिन गणना नहीं कर सकता, ये बता रहे हैं। तो इस एक पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव का अर्थ महसूस करना नहीं है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो परद्रव्य है, और परद्रव्य के गुणों का अनुभव कैसे हो सकता है स्वद्रव्य को? इसलिए अनुभव शब्द का अर्थ अपन वो अनुभव न ले जो लोक में प्रसिद्ध है कि मैंने रसगुल्ला खाया, मुझे साक्षात अनुभव है उसके स्वाद का, वो अनुभव न ले। यहां पर सत्य परिचय है अनुभव शब्द का अर्थ। और ये अनुभव शब्द अपन ने पढ़ा भी था, समय पावड़ की 14वीं गाथा की टीका में अपन ने स्मरण कीजिए आप कि बिसनी पत्र जो सलिल निमग्नस्य बिसनी पत्रस्य, उसके स्पर्श रूप पर स्पर्श पर्यायेण अनुभूय मानतायाम तत्स्पर्श सस्पर्श भूतार्थमेव, वह स्पर्श कैसा है? यथार्थ। लेकिन पानी को न पकड़ने वाले स्वभाव की अपेक्षा से अनुभव करो। अभी दृष्टांत में मत जाइए, अभी अनुभव शब्द के अर्थ पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? कमलिनी का पत्ता स्वद्रव्य है कि परद्रव्य? फिर कैसे अनुभव हो रहा है उसका? अभी बात क्या चल रही है? अनुभव की बात। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि पानी को छू रहा है उस अपेक्षा से अनुभव करने पर वो स्पर्श यथार्थ है, लेकिन पानी को न पकड़ने वाले स्वभाव की अपेक्षा से अनुभव करने पर वो अयथार्थ है वह स्पर्श। अनुभव करने पर, दोनों जगह अनुभव शब्द है, तो अनुभव का अर्थ क्या होगा? परिचय होगा कि नहीं होगा? एक्सपीरियंस हुआ या रियलाइजेशन हुआ? रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? तो आत्मानुभूति का अर्थ होता है आत्मा का सत्य परिचय, और उसी को यहां पर समय पावड़ में सम्यक दर्शन कह रहे हैं। और ये 24 घंटे बना रहता है। कोई सोते समय भूल जाता है कि मेरी मां कौन है? जैसे मां को कोई नहीं भूलता, जैसे गुरु को कोई नहीं भूलता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को नहीं भूल सकता, चाहे वो कुछ भी करता रहे। आचार्य अमृतचंद सूरी ने अपने बारे में कहा कि हम सतत अनुभव करते हैं आत्मा का, और ये यथोदित आत्मानुभूति सभी जीवों को होती है, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं। देखो, अपन आत्मानुभूति के भेदों को न जानने के कारण उस शुद्धोपयोग वाली आत्मानुभूति नीचे वालों को नहीं होती, ये अपनी धारणा है। तो अपन कहते हैं कि नीचे वालों को आत्मानुभूति ही नहीं होती, कहते हैं ना। तो अपने को आत्मानुभूति कितने प्रकार की है ये भी समझना आवश्यक है। तो अपन ऐसा निषेध न कर दे कि आगम में जो बात आ रही है उसका भी निषेध होने लग जाए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि चौथे गुण स्थान में कौन सी आत्मानुभूति होती है, उसकी पंक्ति हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ 237 क्रमांक गाथा है। चरित्र चूलिका अधिकार है। नहीं आगमेण सिद्धि सद्दहनम जदिवि नत्थि अत्थेसु सद्दह माणो अत्थे असंजदो वा न निवादि। आगम से जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता यदि अत्थेसु सद्धर्णम नथी, पर श्रद्धान नहीं है। ठीक है, आगम से जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता यदि आगम के विषय पर उसका श्रद्धान नहीं है। तो श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान सिद्धिदायक नहीं है, पहली बात। उत्तरार्ध में कह रहे हैं सद्ध माणो अत्थे। अब पदार्थों पर श्रद्धान भी हो गया तो भी सिद्धि में एक तत्व और बाधक है, वो क्या है? असंजदो वाण निवादी, असंयमी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। पहला क्या है? आगम का एकदम बढ़िया ज्ञान है हमको, लेकिन श्रद्धान नहीं है भव्य सेन मुनि के समान, तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। और यहां दूसरे में क्या है कि आगम का ज्ञान भी है, आगम का श्रद्धान भी है, पर संयम नहीं है तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। अब इसकी व्याख्या सुनिएगा। अपन उत्तरार्ध को पढ़ते हैं क्योंकि पूर्वार्ध तो सरल है कि आगम को जान रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो मोक्ष नहीं जा सकता, ठीक है, मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि की बात देखिए। सकल पदार्थ ज्ञेयाकार कर्मवित विशदैक ज्ञानाकार आत्मान श्रद्धानोप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति तदानादि मोह राग द्वेष वासनोपजनित परद्रव्य चंक्रमण स्वैरिण्याश्चिद्वृत्ते स्वस्मिन्नेव स्थानान् निर्वासन निःकंपैक तत्व मूर्छित चिद्वृत्त्यभावात् कथन नाम संयत स्यात्। सब पदार्थों के ज्ञेयाकारों से कर्मवित अर्थात चित्रित जो स्पष्ट एक ज्ञानाकार वाला आत्मा है उस पर श्रद्धान करते हुए भी उसका अनुभव करते हुए भी यदि अपने में ही संयत होकर वर्तन नहीं करते तब अनादि मोह राग द्वेष के संस्कार से उत्पन्न परद्रव्य में भटकने वाली स्वच्छंद चेतना की परिणति के उसी स्थान पर स्थिर होने के कारण यानी उसकी चंचलता में ही वो फंसी हुई है चेतना की परिणति तो उसके कारण मोह राग द्वेष के संस्कार से रहित निष्कंप एक स्वरूप में मूर्छित जो चेतना की वृत्ति है उसका अभाव होता है। अगर चेतना की वृत्ति चंचल होगी तो फिर वो ध्यान की अवस्था बन नहीं सकती और उसका अभाव होने के कारण कथन नाम संयत स्यात् संयमी कैसे हो सकते हैं। यानी संयमी की जो चेतना परिणति चेतन परिणति है वो चंचल नहीं होती है स्थिर होती है। अब इसके बाद कह रहे हैं इस पंक्ति को ध्यान से सुनना। असंयतस्य च यथोदित आत्मतत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम असंयत का यथोदित आत्मतत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान जिसका नाम सम्यक दर्शन है। यथोदित जैसा भगवान ने कहा वैसे ही आत्मा के स्वरूप की प्रतीति है उसके पास विश्वास है कि भगवान ने जो आत्मस्वरूप कहा वो वैसा ही है। ऐसी प्रतीति रूप जो श्रद्धान अर्थात सम्यक दर्शन है वह और यथोदित आत्मतत्वानुभूति रूपम ज्ञानम वा असंयतस्य क्या कह रहे हैं असंयत के पास कौन सा ज्ञान है सम्यक ज्ञान है। अभी सम्यक दृष्टि की चर्चा है ना कैसा है वो सम्यक ज्ञान यथोदित आत्मतत्व यथोदित आत्मतत्वानुभूति रूपम यथोदित आत्मतत्व की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान है असंयत के पास। किम कुर्यात लेकिन क्या कर सकते हैं ये दोनों न सम्यक दर्शन कुछ कर सकता है न सम्यक ज्ञान कुछ कर सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए तो तीनों की आवश्यकता है तो इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि असंयत के पास भी यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान है इस पंक्ति से स्पष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल आगम में जिनेन्द्र प्रणीत बस वही है तो इसको आत्मानुभूति कहा ना। बिल्कुल अब एक देश आत्मानुभूति इसके ऊपर होती है इसके नीचे आबाल गोपाल आत्मानुभूति होती है। इसमें लिखा है समय पावड़ में सत्रहवीं गाथा की टीका में जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानी ऊण सद्यदि आपको जानकारी होगी उसकी टीका में लिखा है कि पहली आत्मानुभूति आबाल गोपाल आत्मानुभूति है मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं ये करता ही रहता है सब हर जीव करता है पर उसको ये विवेक नहीं है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसलिए वो मिश्रित को ही अपना स्वरूप मान करके अनुभव कर रहा है। उसका परिचय विकल्प रूप है, अहंकार रूप है। तो वो आत्मानुभूति सबके पास, अबाल गोपाल के पास है। फिर दूसरी आत्मानुभूति कौन सी थी? सम्यक दृष्टि की। और कौन से सम्यक दृष्टि की? असंयत से, अभी पढ़ा अपन ने। तो असंयत के पास जो यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम, यथोदित आत्म तत्वानुभूति है, वो असंयत सम्यक दृष्टि की। फिर तत्वसार की टीका में, जो दूसरी गाथा की टीका है, वहां पर उन्होंने संयता संयत को एकदेश आत्मानुभूति कहा। संयता संयत के पास एकदेश आत्मानुभूति है, इसका अर्थ क्या लेना? वहां पर आत्मा शब्द का अर्थ रत्नत्रय लेना होगा। आत्मा शब्द का अर्थ रत्नत्रय होता है कि नहीं होता? कहां पर? वहां पर तो व्याप्ति नहीं बन रही है ना। ठीक है, पर अपन सीधा समय पहुड़ की गाथा में जाते हैं। सोलवी गाथा देख लीजिए, उसमें लिखा है, दंसन नाण चरिताणि सेवि दब्वाणि साहुणा निच्चम ताणि पुण जान तिन्निवि अपाणम चेव निच्छय दो। दर्शन ज्ञान और चारित्र की सेवा साधु को हमेशा करते रहना चाहिए, और हे शिष्य, इन तीनों को तुम निश्चय से आत्मा ही जानो। ठीक है, ये गाथा है कि नहीं? ताणी पुण जान तिन्निवि अपाणम चेव निश्चय दो। तो निश्चय से रत्नत्रय आत्मा ही है, ये कह रहे हैं। तो वहां पर जो एकदेश आत्मानुभूति है, वहां एकदेश रत्नत्रय की अनुभूति संयता संयत की आत्मानुभूति है, एकदेश आत्मानुभूति। फिर मुनिराजों में सविकल्प और निर्विकल्प आत्मानुभूति, प्रवृत्ति के काल में जो चालू है आत्मानुभूति, दिन रात चल रही है तो सारी की सारी आत्मानुभूति यथोदित आत्मानुभूति। उधर रत्नत्रय को ले लिया और इधर सविकल्प निर्विकल्प। तो निर्विकल्प जो आत्मानुभूति है उसको रागादिक विकल्प न होने की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति का है। परम पारिणामिक भाव जो शुद्धात्मा है उसकी अनुभूति नहीं, रागादिक के अभाव रूप आत्मा की अनुभूति। उस काल में, ध्यान काल में, शुद्धोपयोग के काल में मुनि के अंदर बुद्धिपूर्वक राग का अभाव है, इसलिए उनको जो चल रही है आत्मानुभूति वो शुद्ध आत्मानुभूति है। परम पारिणामिक भाव द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है, जीवत्व का ही एक भेद है वो। 53 भाव पूरे पर्यायार्थिक नय के विषय है, लेकिन 53 में से एक जो पारिणामिक भाव है जीवत्व, उसमें द्रव्यार्थिक नय भी घटित होता है। द्रव्यार्थिक नय वाला जो जीवत्व है वो दश प्राण रूप नहीं होता, वो जीव का जीव पना होता है, इसलिए जीव कभी अजीव नहीं है, क्योंकि उसमें जीवत्व है। वो जो पारिणामिक भाव है वो परम पारिणामिक भाव है, उनसे अलग है। वो तीन पारिणामिक भाव पर्याय रूप है और ये द्रव्य रूप है। कौन सा परम पारिणामिक भाव औदयिक में कैसे आ सकता है? कौन सा औदयिक आदि जो अभी अपन ने पढ़ा था उसमें तत्वार्थ वार्तिक में, औदयिक आदि भावों को भी उपदेशेन जानाति मतिज्ञानी। मतिज्ञानी जीव उपदेश से जानता है, आगम से जानता है। उपदेश का अर्थ आगम है। औदयिक भाव आदि में, औदयिक आदि भावों में जो परम परिणाम, औदयिक भाव में परिणाम कैसे हो सकता है? हाँ जी, नहीं पांच भाव से अलग इसलिए नहीं है क्योंकि पारणना है, पारिणामिक में जो शुद्ध जीवत्व है उसको परम पारिणामिक कहा है, अशुद्ध जीवत्व जो है वो पर्याय आर्थिक नय में गया है और ये शुद्ध जीवत्व जो है वो द्रव्यार्थिक नय में लिया, और ये ध्येय है। अपन जो पढ़ते हैं ना ध्येय क्या है, तो स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन, इष्टोपदेश का काव्य है ना ये, परम पारिणामिक भाव। ये 21वां काव्य, फिर 22वें काव्य में उसका उपाय बता रहे हैं कैसे ध्यान करना उसका, ध्येय का, क्योंकि ये चिंतामणि है ये ध्येय, बाकी ध्येय जो है वो पिण्याक खंड है, ये ध्यान ध्येय चिंतामणि रूप है। तो कैसे ध्यान करना, तो बोलते हैं संयम्य कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मान आत्मवान ध्याये धात्मनैव आत्मनिस्थितम्। बहुत गहरा अर्थ है इस काव्य का, क्या है कि शिविर विर लगा करके इष्टोपदेश पढ़ना पढ़ा देना बहुत सरल होता है, लेकिन इस एक पंक्ति में चार बार आत्मा शब्द है और चारों बार आत्मा शब्द के अर्थ अलग अलग है। तत्वसार की 49वीं गाथा की टीका में आत्मा तत्वसार देवसेन आचार्य द्वारा लिखा हुआ ध्यान ग्रंथ, आत्मा शब्द के 10 अर्थ है। कर्ण ग्रामम संयम्य, इंद्रिय समूह को रोककर, चेतस एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता पूर्वक, आत्मानम ध्यायेत, आत्मा का ध्यान करे। यहां आत्मा शब्द का अर्थ क्या लेना, परम पारिणामिक भाव, क्योंकि पूर्व सूत्र में ही उसका विवेचन किया जा चुका है ध्येय का। तो ध्येय ध्येयभूत आत्मा का ध्यान करने को कह रहे हैं। ध्यान किसका किया जाएगा, ध्येय का ही करना है ना, तो फिर वो ध्येयभूत आत्मा कौन है, परम पारिणामिक भाव। अब ध्याता कौन है, ध्याता कौन है, तो बोल रहे हैं आत्मवान। यहां पर आत्म शब्द का अर्थ क्या लेना, रत्नत्र, उसके अतिरिक्त कोई अर्थ बनेगा ही नहीं वहां। तो ये द्रव्य हो गया जी, इसीलिए आत्मवान का अर्थ होता है रत्नत्रय से संपन्न, मतु प्रत्यय से वान बना, और मतु प्रत्यय किसका वाचक होता है, संपन्नता का वाचक होता है, धनवान। पांच की नोट जेब में है तो धनवान नहीं कहते, जो धन से संपन्न होता है उसको धनवान कहते हैं। इसी प्रकार जो रत्नत्रय से संपन्न है उसको आत्मवान कहते हैं। जिस किसी आत्मा की बात नहीं चल रही यहां पर, यहां पर आत्मवान आत्मा की बात चल रही है। और फिर आत्मवान आत्मा द्रव्य हो गया, और जो ध्येय तत्व है वो भाव हो गया। अब क्षेत्र और काल इनको भी लेना है ना, आत्मा शब्द चार बार आया तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार रूप में इनको अपने को व्यवस्थित रखना है, तब उस काव्य का सही अर्थ घटित होगा। तो अपन ने दो कार्य तो कर लिए, आत्मवान तो द्रव्य हो गया, ध्यान करने वाला ध्याता, और ध्यान जिसका कर रहे हैं वो भाव हो गया, परम पारिणामिक भाव ध्येय हो गया। अब क्षेत्र क्या है, परम पारिणामिक भाव का क्षेत्र क्या है, आत्मनिस्थितम, आत्मानम क्व, आत्मा कहां है, वो परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा किसमें है? तो आत्मनिस्थितम, ये जो जीव है इसके प्रत्येक प्रदेश में वो परम पारिणामिक भाव, तो ये क्षेत्र हो गया उसका आत्मनिष्ठ। एक भी प्रदेश परम पारिणामिक भाव से रहित नहीं हो सकता, आत्मा में सर्वत्र व्याप्त है वो परम पारिणामिक भाव। तो ये क्षेत्र हो गया, और अब काल, काल जो होता है वो वर्तमान पर्याय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो वहां पर तृतीया का प्रयोग किया, आत्मनैव है कि नहीं, उसमें आत्मनैव शब्द निकालिए, ध्यायेत, आत्मनैव, आत्मा से ही ध्यान करें। अब यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? अपने पुरुषार्थ से, और अपने पुरुषार्थ में जो आत्मा है वो क्या है? आत्मानुभव, कि वो जो आत्मानुभव आपने प्राप्त किया है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसी ज्ञान को एकाग्र करके आप ध्यान लगाएंगे। इसलिए आत्मनैव शब्द का अर्थ होता है स्वसंवेदन ज्ञानेन, और स्वसंवेदन ज्ञान जो है वो पर्याय है, तो वो काल के अंतर्गत आ गई, क्योंकि पर्याय काल से बंधी हुई है, पर्याय काल से मुक्त नहीं है। तो इसमें एक पंक्ति में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चारों समन्वित है, तब जाकर के ध्यान होता है आत्मा का, और फिर उससे क्या होता है वो आगामी श्लोक में लिखा ही है, परेशहाद्य विज्ञाना दास्त्रवस्य निरोधिनी। वो ध्यान ऐसा होता है कि उस काल की जो विशुद्धि है वो विशुद्धि इसको बेहोश कर देती है, यानी ध्यान में लीन जो होते हैं उनको होश ही नहीं रहता कि खड़े हैं कि बैठे हैं, दिन है कि रात है, एक घंटा हुआ कि दो घंटा हुआ, उनको भान ही नहीं रहता। और ऐसे समय पर परेशहाद्य विज्ञानात्, परेशहों का ज्ञान नहीं रहता, तब क्या होता है? आस्त्रवस्य निरोधिनी कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, तुरंत संवर पूर्वक निर्जरा हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है, उसको ध्यान संतति को भी उपचार से ध्यान कहते हैं ना, उस अपेक्षा से कथन है। तो धवल ग्रंथ में लिखा है कि नमोकार मंत्र का ध्यान करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले कह रहे हैं कि जिसको पढ़ने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं उसको मंगल कहते हैं, चाहे उसका अर्थ आपको पता हो या ना पता हो, आप पढ़ोगे तो विघ्न नष्ट होंगे ही होंगे। नमो अरहंताणम, इसका अर्थ वो कुत्ता नहीं जानता था, जीवंदर कुमार ने जिसको नमोकार मंत्र दिया था, पद्मरुचि सेठ जिस बैल को नमोकार मंत्र सुना रहे थे वो बैल नहीं जानता था, और ऐसे कितने उदाहरण हैं, किसी को अर्थ नहीं पता था लेकिन फिर भी उनके कर्म नष्ट हुए। जी हाँ, वो सुग्रीव ने। तो बात ये थी कि बिना अर्थ समझे जिसके पढ़ने मात्र से सुनने मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं उसको मंगल कहते हैं। नमोकार मंत्र केवल मंगल नहीं है, वो मंगल होने के साथ साथ सूत्र भी है। सूत्र की परिभाषा देखिए क्या लिखी है, एक तो मंगल हो गया नमोकार, वो मंगल होने के साथ साथ मंगल सूत्र है, वो गले वाला मंगल सूत्र नहीं। परिचित की तरफ अधिक ध्यान जाता है। तो वो सूत्र का अर्थ क्या बताया उन्होंने, जिसको जानकर ध्यान लगाने पर असाध्य कर्मों का निवारण होता है उसको सूत्र कहते हैं। नमोकार मंत्र को आपने समझ लिया और समझने के उपरांत आप ध्यान कर रहे हैं नमोकार का, तो असाध्य कर्मों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र से बढ़कर और कोई खजाना कहीं नहीं है। बिना समझे पढ़ो तो विघ्न नष्ट होते हैं, समझकर ध्यान लगाओ तो असाध्य कर्म नष्ट होते हैं। कितनी अद्भुत बात है, असाध्य कर्म किसी उपाय से जिसका क्षय नहीं हो सकता, वो निधत्त निकाचित, वो ध्यान से नष्ट होते हैं। और नानसार में नमोकार के एक पद की ध्यान विधि दी हुई है। क्या है कि कुछ अपने भाग्य से जितना मिल रहा है वो भी बहुत है, कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका तो शोक तो होता ही है कि नहीं मिल रहा है। तो उसमें पूरे 35 अक्षरों की ध्यान की विधि नहीं मिल रही है अपने को, 7 की मिल रही है। और 7 की ध्यान विधि में क्या लिखा है आचार्य महाराज ने, पद्म सिंह मुनि लिख रहे हैं नाणसार में, कि आप एक आंख पर ण, दूसरी आंख पर मु, एक कान पर अ, दूसरी आंख पर री, एक नाक पर हन, दूसरी नासिका पर ता, और मुख में णम, नमो अरहंताणम। इसकी अगर आप साधना कर लो तो उसमें यह लिखा है कि वे मुनिराज जो इन 7 अक्षरों के ध्यान में निष्णात हो जाते हैं, वो आधे क्षण में लोक का कोई भी कार्य करने में संभव हो जाते हैं। सारे जगत में वो कुछ भी कर सकते हैं। और आधा क्षण होता है 2 मिनट के बराबर, एक क्षण की अवधि 4 मिनट होती है। द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त बताया गया है, 12 क्षणों का मुहूर्त। इसका अर्थ यह हुआ कि 48 को 12 से भाजित कर दो तो एक क्षण की अवधि आ जाएगी, तो कितनी हुई 4, तो 4 मिनट का एक क्षण होता है। और इस नमो अरहंताणम का अरि और अर दोनों का ध्यान हो सकता है, तो नमो अरहंताणम का ध्यान कर लें इन स्थानों पर, पूरी दुनिया को भूल करके इसका ध्यान कर लें, और केवल 7 बार, क्योंकि 7 प्रकार के केवली होते हैं ना, तो 7ों को एक एक बार में आप नमस्कार कर लें, असाध्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है। सात प्रकार के केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। अपन नमो अरहंताणु 7 बार बोलेंगे तो 7ों को नमस्कार कर लेंगे लक्ष्य करके। नमो हो सकता है, हाँ ठीक है ना, सप्त छिद्र हो गए। हो सकता है ना, अब वो जो हमारी समझ में आया वो हमने बताया, और वो ध्यान ग्रंथ है। तो सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते अपन यहां आए हैं, तो बात यही चल रही थी अनुभूति के जो भेद हैं उस पर चर्चा चल रही थी। स्थान तो गाथा में इतना बारीकी से वर्णन नहीं है, ये तो अपने समझने के ऊपर था कि इन 7 स्थानों पर आपको नमो और अंताणम का ध्यान करना है। तो कोई भी अक्षर कहीं भी रखो, जैसा भी जिनको, हाँ जैसी धारणा हो जाए, बिल्कुल हाँ। यही 7 दिए और एक मुख ऐसा है। आप समझ करके अरहंत को आपने अच्छी तरह समझ लिया, धवला से पूरा पढ़ करके पूरा क्लियर कर लिया, फिर आप ध्यान करोगे तो असाध्य कर्मों का क्षय है इसका फल।
अन्य धर्मावलंबी लोग अभिहंताणम को, नमो अरिहंताणम को भले ही न जाने, लेकिन वे लोग भी कहते हैं कि जैनी लोग,
माइक
अच्छा जैनी लोग, जैनी लोग जो है नमो यदा जाप कर ले, ध्यानवान की क्या बात, तो जाप करने मात्र से कोरोना रोग भाग सकता है।
ठीक है,
अभी तो
जी जी
नमोकार मंत्र एक अनुसंधन तो उन्होंने प्रस्तावना में दिया है, लेकिन डॉक्टर ने विदेशी डॉक्टरों ने ये कहा कि हम लोग रोगी के तो जिन देवों की उसकी श्रद्धा है उन देवों का स्मरण ही हम को सहायता देता है, क्या उसको ठीक कर सकते।
जब हम पूना से मांगेतुंगी की ओर बिहार कर रहे थे तो एक श्वेतांबर धर्मशाला में रुकना हुआ था बीच में एक स्थान पर। अब वहां पर एक व्यक्ति आया और बोले कि एफेजिया एक बीमारी होती है कि 12 वर्ष तक मेरी वाणी बंद हो गई थी, बोलना बंद हो गया था और कोई इलाज नहीं हो रहा था, पर मुझे रमोकार पर पूरी श्रद्धा थी, मैंने नमोकार की आराधना अखंड रूप से जारी रखी और 12 वर्ष बाद मैं अच्छी तरह बोल रहा हूं। ऐसे ही कोई एक कैंसर पेशेंट भी था, उसको कोई महाराज ने बोला था कि तुम रात दिन जब भी तुम्हें याद हो नमो हरिंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण चालू रखो। उसका अल्टीमेट जो फाइनल स्टेज वाला कैंसर था वो ठीक हो गया था।
आचार्य महाराज ने तो वो एक गांव में सबको मतलब सर्व का त्याग कराया, तो एक व्यक्ति उनको बोल महाराज और इसको रहने दीजिए बाकी, क्योंकि हमारे गांव में सांप बहुत है।
अच्छा,
सांप का ये जहर उतारता
है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो इसको आप सर्व का त्याग कर करा लीजिए तो हम लोग सब हो जाएंगे। तो ये मंत्र बताता हूँ,
अरे वाह,
आचार्य महाराज ने कहा इसका जाप क्या कर इसका स्मरण रख तेरा कार्य होगा।
बिल्कुल,
अंजन अंजन चोर को क्या था, आनंद
तो आज अपन ने प्रवचन सार ग्रंथ से सम्यक दर्शन के विषय में ये जानकारी प्राप्त की कि यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिनेंद्र द्वारा प्रणीत आत्मा के, बिल्कुल यथोदित कार जैसा उन्होंने भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है उस पर प्रतीति हो जाए, विश्वास हो जाए तो वो सम्यक दर्शन है। ये प्रवचन सार का वर्णन था, और उसकी अनुभूति हो जाए, परिचय हो जाए तो वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा है।